لیے کتنی دیر وقت.
وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا بذكر الله تطمئن القلوب وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب او كما قال عليه الصلاة والسلام.
اب یہ اس کو پیچھے کر دیں ایسے تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو نا.
ہاں ایسے
آپ راہ سے پھر جام بیٹھے آپ. میرے شیخ میرے پیر و مرشد عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم, حضرت والا نے فرمایا کہ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں گرچہ در خشکی ہزارہ رنگ ہاست, کہ اگرچہ مچھلیوں کے لیے ساحل کے اوپر اور خشکی کے اوپر ہزاروں رنگینیاں ہیں. یعنی کوئی آدمی اگر مچھلی سے یہ کہے کہ دیکھو دریائے چترال کی مچھلیوں کو خطاب کر کے کہے کہ اے مچھلیوں آج کل گلیشیئر کا پانی برف کا پانی پگھل کر آ رہا ہے اور جو یخ اور ٹھنڈا اور سرد ہوتا ہے, ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے تمہیں نزلہ ہو جائے اور زکام ہو جائے. اور ظاہر بات ہے مچھلی جو ہے وہ پکول بھی نہیں پہنتی ہے کہ اس کا سر گرم رہے. تو اگر کوئی مچھلی سے کہے کہ دیکھو تم نے پکول بھی نہیں پہنی ہوئی اور گلیشیئر کا پانی آ رہا ہے جو خوب ٹھنڈا ہوتا ہے اور یخ ہوتا ہے, لہذا دریا میں مت رہو اور آؤ دریا سے باہر ریسٹ ہاؤس ہے ذرا وہاں آ جاؤ. اور دریا کے اندر آج کل بڑی بڑی مچھلیاں بھی آئی ہوئی ہیں اور بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہیں, اور دریا میں مگرمچھ بھی ہے وہ بھی مچھلیوں کو کھا جاتے ہیں. تو آؤ ادھر ریسٹ ہاؤس میں آؤ, وہاں پر ہیٹر بھی لگا ہوا ہے اور وہاں پر ٹی وی بھی ہے اور وہاں پر کیبل بھی ہے جس میں کئی چینل بھی آتے ہیں جس میں ڈانس کا پروگرام بھی ہوتا ہے, اور اس کے اندر اور اس ریسٹ ہاؤس میں تم کو مچھلی کے کباب بھی کھلائے جائیں گے. مچھلی سے کہا جا رہا ہے کہ تم کو مچھلی کے کباب بھی کھلائے جائیں گے, اور یہاں پر حسین بھی ہوں گے عورتیں بھی ہوں گی, بڑا مزہ آئے گا اور جام آئے گا, جام مزہ آئے گا. تو دریا میں کب تک رہو گی, ایسا نہ ہو نزلہ کھانسی ہو جائے. تو میرے شیخ میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ کبھی کسی مچھلی کو کھانستے ہوئے دیکھا یا کبھی کسی مچھلی کو نزلہ ہوا ہے, کہ ایسا نہیں ہے کہ مچھلی کو نزلہ ہو یا مچھلی کھانسی کرے. تو مچھلی نے اس آدمی کو جس نے یہ کہا کہ آؤ ادھر وہاں چھوڑو اور دیکھو تمہارے لیے کتنی رنگینیاں ہیں دریا کے باہر, دریا میں کیا ہے, بس وہی دریا کی پانی ٹھنڈا وہی روانی ہے, یہ تم کب تک ان چیزوں میں رہو گے, آؤ باہر آؤ, کیسے زمانہ دیکھو کہاں ترقی کر گیا, کیسی کیسی انٹرنیٹ آ گئی, کیسی کیسی فلمیں آ گئی, کیسے حسین ہیں کیسے نظارے ہیں, یہ سب مزہ لو. تو ماں جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں گرچہ در خشکی ہزارہ رنگ ہاست, کہ اگرچہ خشکی میں ہزاروں رنگینیاں موجود ہیں, دلکش اور دلچسپ چیزیں موجود ہیں, لیکن فرماتے ہیں ماہیاں را با یبوست جنگ ہاست, فرماتے ہیں کہ مچھلیوں کی خشکی کے ساتھ تو جنگ ہے. لہذا مچھلی نے اس کو جواب دیا, میرے مرشد نے فرمایا, اس مچھلی نے کہا کہ بات یہ ہے کہ پانی کے اندر مجھے امید ہے, پہلی بات تو یہ کہ مجھے نظرہ نہیں ہوتا اور کھانسی بھی نہیں ہوتی, چاہے پانی کتنا ہی گلیشیئر کا ٹھنڈا پانی آ رہا ہو, اور دوسری بات یہ کہ اگر بڑی مچھلی بھی ہے جو چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے تو بات یہ کہ شاید وہ مجھ کو نہ کھائے, امید باقی ہے, اور مگرمچھ شاید وہ بھی مجھ کو نہ کھائے, یہ بھی امید باقی ہے. لیکن اگر میں پانی سے باہر نکل آئی تو پانی سے باہر نکلنے میں میری موت یقینی ہے, पानी के अंदर हयात की उम्मीद बाकी है ना, और पानी के बाहर तो मौत यकीनी है। तो मेरे प्यारे शेख, मेरे पीर और मुर्शिद फरमाते हैं कि देखो, जिस तरह से मछली को पानी के बगैर चैन और सुकून नहीं मिलता, अल्लामा काजी सनाउल्ला पानीपति रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अपने वक्त के इमाम बहकी थे, शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस देहलवी शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे ने फरमाया कि ये जो शख्स है, कौन, काजी सनाउल्लाह पानीपति रहमतुल्लाह अलैह, ये जो शख्स है अपने वक्त का इमाम बहकी है। हदीस शरीफ में उनका इतना मर्तबा और इतना मकाम कि उनके बारे में बतौर फरमाया कि ये इस जमाने का इमाम बहकी है जो पुराने मुहद्दिस गुजरे हैं। और अल्लामा काजी सनाउल्लाह पानीपति रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर लिखी है, उस तफसीर का नाम है तफसीर मजहरी। इनका नाम क्या है? काजी सनाउल्लाह पानीपति। और तफसीर का नाम क्या रखा? तफसीर मजहरी। क्यों? अपने शेख, अपने पीर और मुर्शिद के नाम पर, जिनका नाम क्या था? मिर्जा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह, जो आलमगीर बादशाह के खालाजाद भाई थे। और हजरत का मिजाज ऐसा लतीफ था, मिजाज में इतनी नजाकत और सेंसिटिव था उनका मिजाज कि रावजियों ने हजरत को गोली मारी, शहीद किया। तो किसी ने पूछा कि हजरत आपको गोली लगने से तकलीफ हो रही है? फरमाया कि गोली लगने की कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि एक दिन मरना तो है हमको, लेकिन वो जो गंदक और बारूद की बू है उससे सर में दर्द हो रहा है। ऐसा लताफत थी मिजाज में। तो अल्लामा काजी सनाउल्लाह पानीपति रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर का नाम अपने शेख और मुर्शिद के नाम पर रखा, तफसीर मजहरी। उस तफसीर मजहरी के अंदर इस आयत के तहत में अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, क्या मतलब? अला, अला का तर्जुमा मेरे मुर्शिद जो फरमाए करते हैं अरबी जबान के अंदर, तंबीह के लिए यानी वार्निंग के लिए लिखते ना, कहीं कोई फौजी इलाका हो या कोई खास इलाका हो, वहां लिखा रहता है वार्निंग, खबरदार। तो अला जो है अरबी के अंदर तीन अल्फाज ऐसे हैं, तीन कलमे ऐसे हैं कि जो के तंबीह के लिए इस्तेमाल होते हैं, अला, अमा और हा। लदा अला के क्या माने? खबरदार। और इसका तर्जुमा जो मेरे शेख फरमाते हैं मौलाना, वो अजीब है, देखिए, फरमाते हैं कि अपने कानों से गफलत की रुई निकालो और खूब गौर से सुनो कि सिर्फ अल्लाह ताला ही की याद से दिलों को चैन, इत्मीनान और सुकून मिलेगा। यानी अल्लाह के साथ पहले खबरदार कर दिया, खबरदार। इसका मतलब क्या हो गया? ये मत समझना कि किसी और से भी चीज से भी चैन और सुकून मिलेगा। लिहाजा ये मत समझना एयर कंडीशनों से या कारपेट से, मोबाइल से, और बड़े बड़े टीवी रखे या दुनिया जहां में जगह जगह घूमे, बैंक बैलेंस बहुत बढ़ा लिया, कारोबार बहुत बढ़ गया, शानदार मोटर और गाड़ी रख ली, लिबास भी शानदार पहन लिया, और ये समझे कि हमें उसको चैन और सुकून मिलेगा, इस धोखे में ना रहना। क्योंकि अगर इन चीजों में चैन और सुकून होता तो दुनिया की असबाब के एतबार से जो ज्यादा तरक्की याफ्ता और ज्यादा तरक्की की जो चीजें हैं वो काफिरों के पास है। लेकिन क्या बात है, जब किसी काफिर को कोई तकलीफ पहुंचती है, कोई गम आता है, वो फौरन खुदकुशी कर लेता है। हालांकि असबाब राहत की चीजें तो उसके पास मौजूद है, लेकिन एक मुसलमान जो जिसका ईमान इंतहाई कमजोर है, कमजोर ईमान का मुसलमान जो मान लो नमाज भी नहीं पढ़ता, लेकिन जब उस मुसलमान को भी कोई तकलीफ पहुंचती है वो क्या करता है? सर पर टोपी रखता है और हाथ में तस्बीह लेता है और मस्जिद में आ जाता है। वो जानता है कि इस वक्त कायनात में मेरे गम को, मेरी परेशानी को और मेरी तकलीफ को अल्लाह ताला के सिवा कोई दूर नहीं कर सकता। लगा वो मस्जिद में आता है, अब क्या है, अब आके मस्जिद में तस्बीह पढ़ रहा है, दुआएं मांग मांग के रो रहा है, नमाज पढ़ रहा है तो रो रहा है, कुरान मजीद पढ़ना नहीं आता लेकिन कुरान मजीद को सब देखता है और देखकर रोना शुरू कर देता है, और अल्लाह से कहता है कि अल्लाह आपके सिवा मेरी मुसीबत को कोई दूर नहीं कर सकता। उलमा से, अल्लाह वालों से, नेक लोगों से कहते भाई मेरे लिए दुआ करो। तो ये शख्स जिसका भी गम दूर नहीं हुआ, जिसकी परेशानी अभी दूर नहीं हुई, लेकिन जब मस्जिद से बाहर निकलता है तो उसके चेहरे पर इत्मीनान होता है। हालांकि अभी परेशानी मौजूद है, अभी गम भी मौजूद है, अभी मुसीबत मौजूद है, लेकिन क्या बात है, आह मेरे मुर्शिद फरमाते ये बात यह है कि अल्लाह ताला जो है वो सुकून देने वाली जात, वो अल्लाह ताला की जात है। لہذا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو چین اور سکون عطا فرماتے ہیں، باوجود یہ کہ اس کے غم میں اس کی ابھی پریشانی غم اور مصیبت موجود ہے، لیکن دل میں کیا ہوتا ہے؟ اطمینان ہوتا ہے. پہلے آیا تھا روتا ہوا مسجد میں آیا تھا، اب مسجد سے باہر جا رہا ہے تو لبوں پر مسکراہٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد میں، ذکر میں، اپنی یاد میں چین رکھا ہے میرے پیارے دوستوں. لہذا اس لیے کوئی مسلمان اپنی مصیبت اور غم اور پریشانی میں جب اللہ تعالیٰ سے رابطہ کر لیتا ہے، پھر اس کو جو ہے وہ خودکشی نہیں کرتا. اور کافر ذرا سی مصیبت ہو جائے، ذرا اس کا قرضہ چڑھ جائے، کوئی اس کا کاروبار وہ ہو جائے. میرے ایک پیر بھائی ہیں جو بنگلہ دیش میں رہتے ہیں، میرے شیخ کے خلیفہ بھی ہیں وہ، اور بہت بڑے تاجر ہیں ماشاءاللہ. وہاں پر لوہے کا ان کا بہت بڑا کام ہے. ایک مرتبہ ان کا ایک جہاز لوہا لے کر آ رہا تھا سمندر کے ذریعے سے، پورا جہاز لوہے سے بڑا، اور ان کی زندگی کی جو کل پونجی تھی وہ سب اس جہاز میں تھی، کروڑوں روپے کا. خبر آئی کہ وہ جو جہاز آ رہا تھا تجارت کا مال لے کر، وہ جہاز ڈوب گیا. اب آپ تصور کریں، ایک آدمی کی کل پونجی کسی کام میں لگی ہو اور وہ ڈوب جائے، خسارہ ہو جائے، نقصان ہو جائے، کیا گزرتی ہے دل پر، کیا عالم ہوتا ہے اس کا. یہی عالم ہوا، پریشانی سے برا حال ہو گیا، سمجھ میں نہیں آیا کیا کروں. ایک پیر بھائی نے کہا، ارے ظالم تو کیوں پریشان ہوتا ہے، حضرت کو فون کر، حضرت سے پوچھ. میرے مرشد کو انہوں نے فون کیا، رونے لگے کہ حضرت میں بہت پریشان ہوں. پوچھا کیا بات ہے؟ کہا حضرت پریشانی یہ ہے کہ میرا کروڑوں روپے، ساری زندگی کی جمع پونجی اس جہاز میں تھی اور وہ جہاز ڈوب گیا. مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیخ نورانی زیرہ آگاہ کنت، شیخ نورانی زیرہ آگاہ کنت. یہ جو اللہ والے جن کا جسم نورانی اور اپنے جسم سے نورانی اعمال جن کے صادر ہوتے ہیں اور ان کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کا نور ہوتا ہے، نور معرفت ہوتا ہے، نور عبادت ہوتا ہے، لہذا جب ان کی زبان سے کوئی بات نکلتی ہے تو وہ نور کوٹیڈ ہوتی ہے. نور کوٹیڈ سمجھتے ہیں نا جناب؟ جیسے کڑوی دوا کو، ایک بچے کو ماں نے کڑوی دوا کھلائی اور کیسے اس کو کہا، دیکھ یہ گلاب جامن ہے، اس گلاب جامن کو تو کھا لے، اور اس گلاب جامن کے درمیان میں گولی کڑوی والی رکھ دی کہ بچہ گلاب جامن کھائے گا میٹھا، ساتھ میں گولی بھی کھا لے گا. اور ماں نے کہا یہ گلاب جامن تو کھا لے، خود چلی گئی. تھوڑی دیر میں آئے، پوچھا ہاں بیٹا گلاب جامن کھا لیا؟ اس نے کہا ہاں ماں گلاب جامن تو کھا لیا، اور اس کے اندر جو گٹھلی تھی نا وہ پھینک دی. پھر پیارے دوستو، اب وہ کیا کوٹڈ کوٹ کر دیا، یعنی اس پر تہ چڑھا دی، تہ چڑھا دیتے ہیں، شوگر کوٹڈ جیسے ہوتے ہیں، شوگر کوٹڈ کے اس پر مٹھاس کی تہ چڑھا دی جاتی ہے. تو میرے پیارے دوستو، یہ جو اللہ والے جن کے دل میں اللہ کی محبت کا نور ہوتا ہے، عبادات کا نور ان کے پاس ہوتا ہے، جب ان کی زبان سے کوئی الفاظ نکلتے ہیں تو اس پر نور کی تہ چڑھی ہوئی ہوتی ہے، یعنی وہ نور کوٹڈ ہوتے ہیں. لہذا وہ نور ان کی زبان سے نکل کر کان کے ذریعے سے دل میں اتر جاتا ہے. یہی وجہ ہے کیا فرماتے ہیں، شیخ نورانی زیرا آگاہ کنت، نور را با لفظ ہا ہمرا کنت. جب کوئی وہ بات کرتے ہیں تو بات وہی ہوتی ہے جو ہم کرتے ہیں، وہی بات کرتے ہیں، لیکن ان کی الفاظ کے اندر نور کا اضافہ ہوتا ہے میرے دوستوں. لہذا وہ بات کانوں کے ذریعے سے دل میں اتر جاتی ہے. تو میرے مرشد نے ان سے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی رہو، اس غم میں، اس مصیبت میں بھی ضرور آپ کے لیے راحت ہے، بس اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہو. کوئی لمبی تقریر نہیں، کوئی دو گھنٹے کی تقریر نہیں، کوئی لمبے جوشیلے بیانات نہیں، کچھ نہیں، کوئی قرآن پاک حدیث پاک کا کوئی حوالہ نہیں. سب اتنا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی رہو، اس میں بھی تمہارے لیے خیر ہے. وہ فرماتے ہیں، وہ ہمارے پیر بھائی فرماتے ہیں کہ حضرت کے یہ الفاظ کا زبان سے نکلنا تھا اور میرے کان میں گھسنا تھا، ایسا دل میں سکون اور اطمینان آیا کہ ایسا جیسے مجھ کو کوئی غم ہی نہیں ہے. اور ان کو میں نے خود دیکھا بنگلہ دیش میں، الحمدللہ اللہ تعالی نے اس جہاز کے ڈوبنے کے بعد اتنا مال دیا کہ بس تصور نہیں ہے اس کا. بنگلہ دیش میں کتنے مدارس، بیسیوں مدارس تو وہ خود اپنے خرچے سے چلا رہے ہیں، اپنے خرچے سے بیسیوں مدارس. تو میرے پیارے دوستو، یہ ہے یہ اس اطمینان اور وہ چین جو اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد میں رکھا. کافر اس سے محروم ہے، और एक बात याद रखिएगा, सुकून जो है सुपर स्टोर पे, जनरल स्टोर पे या दुनिया की किसी मार्केट में नहीं मिलता कि हम लंदन चले जाएंगे, लंदन से इंपोर्ट कर लेंगे, या दुबई से लेकर आ जाएंगे, या कराची से मंगवा लेंगे। क्यों जनाब? ये कहीं नहीं मिलता। ये कहां कैसे मिलता है? मेरे मुर्शिद का शेर है, फरमाते हैं, सुकून दिल उतरता है फलक से अहले तकवा पर। सुकून दिल उतरता है फलक यानी आसमान, सुकून दिल उतरता है फलक से अहले तकवा पर, बिदू हुक्म खुदा साइंसदान फिर कैसे पा जाता। ये साइंसदान के अख्तियार की चीज नहीं है, अल्लाह ताला ने ये सुकून अपने हाथ में रखा है। और फरमाया, सुकून दिल होता अगर पेट्रोल की मानिंद, यानी सुकून दिल जमीन में होता और क्या करते, पेट्रोल की तरह होता। सुकून दिल अगर होता पेट्रोल की मानिंद, जमीन में करके बोरिंग, इसको हर काफिर भी पा जाता। अब काफिर भी उस पर कब्जा कर लेता, क्योंकि सारी ड्रिल मशीनें तो उसके पास है, वो सारे ड्रिल लगाकर सारा सुकून अमरीका, जर्मन, जापान ले जाता और मुसलमान महरूम हो जाता। लेकिन अजीब मजे की बात है, अल्लाह ताला ने सुकून दिल अपने इख्तियार में रखा और बड़े बड़े असबाब आयश रखने वालों के पास असबाब आयश की कमी नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने ये सुकून रखा अपने आशिकों के पास और अपनी याद में ये सुकून रखा। लादा अल्लाह के आशिक को कोई गम कोई मुसीबत हो जाए तो मेरे प्यारे दोस्तों, वो खुदकुशी नहीं करता, रोता है, अल्लाह से गिड़गिड़ाता है, दुआएं कराता है, कहता भी है तकलीफ है, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों ये जिक्र की बरकत है कि ये जिक्र की बरकत है कि वो खुदकुशी नहीं करता। गम में दिल गुजरते हैं, कभी कभी गम का ऐसा भी आलम होता है जिसको मेरे मुर्शिद ने यूं फरमाया, गुजरता है कभी दिल पर वो गम जिसकी करामत से, गुजरता है कभी दिल पर वो गम जिसकी करामत से, मुझे तो ये जहां बे आसमां मालूम होता है। कभी कभी बंदे पर कोई गम मुसीबत आती है तो उस गम और मुसीबत का नतीजा यह होता है, जब वो अल्लाह के हुजूर में सजदा करता है तो उसको ऐसा लगता है सारे पर्दे सारे हिजाब हट गए और गोया के मैं अल्लाह ताला को देख रहा हूं, ऐसे गम उस पर होता है। लेकिन आह, मेरे मुर्शिद ने एक बात फरमाई, फरमाया देखो, स्विट्जरलैंड वाले घड़ी बनाते हैं और दावा करते हैं कि अगर आप इस घड़ी को 1000 मीटर की डेप्थ और गहराई के अंदर, पानी की गहराई में कितनी, 1000 मीटर की लाइफ टाइम वारंटी देते हैं वो, ता हयात यानी वो 10 साल मुराद होती है उससे, उनकी 10 साल की गारंटी वारंटी देते हैं कि ये घड़ी जो है वाटर प्रूफ है, लगा पानी इसके अंदर नहीं जाएगा, और एक कितना 1000 मीटर की गहराई में। तो मेरे प्यारे शेख, मेरे मुर्शिद ने फरमाया, स्विट्जरलैंड वाला घड़ी बनाकर ये दावे कर रहा है, तो फरमाया कि जिस तरह स्विट्जरलैंड घड़ी बनाते हैं वाटर प्रूफ, अल्लाह ताला अपने प्यारों को और अपने जिक्र करने वालों के दिलों को गम प्रूफ बना देता है। ऐसा नहीं कि उनको गम नहीं आता, गम आता है, लेकिन वो गम दिल के बाहर रहता है, दिल के अंदर दाखिल नहीं होता। लगा आप देख लीजिए मुसलमान का क्या आलम है, तकलीफ हो जाए आंखों में आंसू भी होंगे लेकिन लबों पर मुस्कुराहट भी होगी, आंख में आंसू भी होंगे, रो भी रहा होगा, क्यों, प्यारे का इंतकाल हो गया, बेटे का इंतकाल हो गया, माँ बाप का इंतकाल हो गया, कोई गम और परेशानी कोई और आ गई, बीमार है, खुद बीमार है, पूछो क्या हाल है, पूछो क्या हाल है, तो कहता है जाम। अल्लाह ताला उसके दिल को जिक्र की बरकत से गम प्रूफ बना देते हैं, इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों वो कभी खुदकुशी नहीं करता। एक वाकया याद आया, हजरत उबई बिन काब रजी अल्लाह ताला सहाबी हैं, ये वो सहाबी हैं कि सरवर आलम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान मजीद 4 लोगों से सीखो, जिनमें ये भी हैं, और एक हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी हैं, हजरत मुआज बिन जबल भी हैं। तो हजरत उबई बिन काब के एक दिन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि ए उबई बिन काब, मुझे अल्लाह ताला ने यह हुक्म फरमाया है कि मैं तुमको सूरह बय्यिना पढ़कर सुनाऊं। कौन सी सूरत? लम यकुनिल लदीना कफरू मिन अहलिल किताब वल मुशरिकीन, ये वाली जो सूरत है, ये सूरत जो है, फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि मैं ये सूरत तुमको पढ़कर सुनाऊं। अब उस सहाबी का हाल देखिए, हम होते हाँ हाँ सुनाइए, लेकिन उन सहाबी का इश्क और मोहब्बत देखिए, उन्होंने अर्ज किया اب سوال دیکھیے کیا تھا، عاشقانہ سوال ہے. ان صحابی نے عرض کیا، اللہ سمانی، کیا اللہ تعالی نے میرا نام لیا تھا؟ سوال کتنا عاشقانہ ہے، اللہ سمانی، کیا اللہ تعالی نے میرا نام لیا تھا؟ کہ یہ میرا نام لے کر فرمایا تھا کہ اے نبی میرے اپنے صحابی عبی بن کعب کو سورہ بجینہ پڑھ کر سناؤ، تو کیا اللہ تعالی نے میرا نام لیا تھا؟ اللہ سمانی. تو میرے مرشد نے جب یہ روایت سنائی تو فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں نام اللہ سما کا، اے صحابی اللہ تعالی نے تیرا نام لیا تھا. بس کیا عالم ہوا، فضر فتح نہ ہوں، رونے لگے. اب آپ بتائیے یہ جو آنسو ہے یہ غم کے آنسو ہے یا خوشی کے آنسو ہے؟ تو پتہ یہ چلا، آپ میرے مرشد فرماتے کہ عجیب جامع الازداد ہے تیرے عاشق، عجیب جامع الازداد ہے تیرے عاشق، یعنی ضد کو جمع کرنے والے ہیں. وہ کیسے؟ خوشی میں روتے ہیں اور غم میں مسکراتے ہیں. یعنی جب کوئی خوشی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس صحابی کا نام لے رہے ہیں، اس سے کیا اس صحابی کا درجہ، اس کا مقام اللہ تعالیٰ کی نظر میں سوچی کیا ہو سکتا ہے؟ ہم کیسے اپنی محدود عقل سے بتا سکتے ہیں کہ جس صحابی کی قسمت کا یہ عالم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس صحابی کا نام لے رہے ہیں، اس کی قسمت کا کیا حال ہوگا، مرتبے کا کیا حال ہوگا؟ اور اس کی خوشی دیکھیے، کیا وہ خوشی کے مارے ناچنا شروع نہیں کر دیا کہ جی شادی ہے، خوشی ہو رہی ہے، ناچنے گانے والے نہیں ہوئے تو ہم نے کیا خوشی منائی، ہمارے ڈانس کا پروگرام نہیں ہوا تو ہم نے کیا خوشی منائی، اگر ہم نے فائرنگیں نہیں کی تو ہم نے کیا خوشی منائی؟ کیا میرے دوستو خوشی اس طرح منائی جاتی ہے؟ اور پھر فائرنگ کر کے، جب فائرنگ کے دوران کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شادی کے گھر میں کسی کو گولی لگ بھی جاتی ہے، پھر اس کا خوشی کا کیا حال ہوتا ہے؟ تو میرے پیارے دوستو، ہمیں شریعت نے یتیم نہیں پیدا کیا، اللہ تعالی نے ہمیں یتیم نہیں بنایا، ہمیں شریعت دی ہے، ہر موقع کے لیے ہمارے پاس عمل موجود ہے، سنت کا عمل موجود ہے، ہم لوگ یتیم نہیں ہیں. لہذا خوشی ہے، صحابی کی خوشی دیکھو کہ خوشی ہوئی تو یہ نہیں کہ چلو آپ ڈانس شروع کر دیں یا چلو آپ گانے والے اور ناچنے والوں کو بلائیں، فائرنگ کرے، نہیں، آپ خوشی کا عالم یہ کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، فضل و بدائی نہ ہو، آپ کی آنکھیں بھر آئی. تو میرے پیارے دوستو کیا فرمایا میرے مرشد نے، عجیب جامع الازداد ہیں تیرے عاشق، خوشی میں روتے ہیں اور غم میں مسکراتے ہیں. خوشی کا عالم ہے تو رو رہے ہیں، حالانکہ خوشی میں ہنسا جاتا ہے لیکن ضد ہے یہ کہ خوشی میں رو رہے ہیں اور غم میں مسکرا رہے ہیں. کوئی غم آئے، بیمار ہیں، پوچھا کیا حال ہے، جام اسوم، کہہ رہے جام نہیں کچا اسوس، پوچھا کیا کچا اسوس، اس نے کہا جام، کہہ رہے کتنا جام، کہہ رہے بو جام، اور مسکراہٹ ہے اس کے لبوں پر. تو میرے پیارے دوستو، اللہ تعالی نے سکون رکھا اپنی یاد میں. اب ایک سوال ہے کہ سوال یہ ہے کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں ذکر بھی کرتا ہوں، میں تلاوت بھی کرتا ہوں، میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، اشراق اوابین نوافل بھی پڑھتا ہوں، تبلیغ میں چلے بھی لگاتا ہوں، بزرگوں سے علماء سے محبت بھی کرتا ہوں، ان کے بیانات میں بھی بیٹھتا ہوں، لیکن یہ جو سکون کا ذکر ہو رہا ہے، حج و عمرہ بھی کرتا ہوں، زکات بھی دیتا ہوں، خیرات مسجد مدرسے میں مال بھی دیتا ہوں، لیکن یہ سکون مجھے پھر بھی نہیں ہے، تو کیا یہ آیت غلط ہو جائے گی؟ جس کی تفسیر علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی بتانا بھول گیا کہ وہ فرمایا کہ بذکر اللہ معنی میں فی ذکر اللہ کے لیے، اب یہ دونوں جواب ایک ساتھ آ جائیں گے کہ بذکر اللہ معنی میں فی ذکر اللہ کے ہے. یہ علامہ کس نے فرمایا؟ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ نے فرمایا کہ یہاں بذکر اللہ معنی میں فی ذکر اللہ کے ہے، با کیا جو معنی میں فی کے ہے. فرماتے کیسے؟ کما ان سمکتا تطمئن فی الماء ولا بالماء. یہ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی تفسیری جملہ ہے جو انہوں نے اپنی تفسیر مظہری کے اندر نقل فرمایا ہے. دیکھیں بھائی، جن حضرات کی کمر میں درد ہو یا بیمار ہو وہ تو ٹیک لگا لے، لیکن جن حضرات کی کمر میں درد نہ ہو یا بیمار نہ ہو یا کوئی اور عذر نہ ہو، تو دین کی بات سننا یہ ادب ہے میرے دوستوں کہ ٹیک لگا کر نہ بیٹھا جائے. ہاں معذور بےچارہ ہے، وہ دیکھیں نا شریعت نے کیا کہ کوئی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، حالانکہ نماز میں کھڑے ہونا فرض ہے، لیکن اگر کوئی معذور ہے کیا ہدایت دی شریعت نے؟ بیٹھ کے نماز پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا اشارے سے پڑھو، کتنی رعایت ہے. تو رعایت کس کے لیے؟ وہ اس کے لیے جو بےچارہ معذور ہے، جیسے بڈھا ہو گیا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں سفید بال والے بالکل ٹائٹ بیٹھے ہوئے اور چوکس بیٹھے ہوئے، इसलिए हाँ कोई बीमार है, जैसे कोई सफर से आए तो थक जाता है, थकावट की वजह से टेक लगा ले, या बीमारी या कोई तकलीफ है, तो वो बेचारे उसके लिए रियायत है, उसको मना नहीं कर रहा मैं। लेकिन जिसको कोई उजर ना हो, अगर कोई आदमी जो खड़े होकर नमाज पढ़ सकता है बैठकर नमाज पढ़ेगा तो उसकी नमाज होगी, नहीं होगी उसकी नमाज। तो मेरे प्यारे दोस्तों फरमाते कि अल्लामा आलूसी सैयद नामू अल्लामा काजी सनाउल्लाह पानीपति रहमतुल्लाह अलैह के बिज़िकल्ला माने में फिज़िकल्ला के, कैसे जैसे मछली के साथ पानी रख दो तो उसको चैन नहीं मिलता जब तक वो पानी के अंदर डूबे नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों हमें इबादत जिक्र तिलावत के बावजूद जो सुकून और चैन नहीं मिलता उसकी वजह क्या है उसको एक मिसाल से समझिए। सर्दियां आने वाली हैं चित्राल के अंदर, सर्दियों के जमाने में आपकी मस्जिद में भी हीटर लगा हुआ है नहीं लगा हुआ? अच्छा खैर अक्सर मस्जिद में होता है, घरों में भी होता है। घर में हीटर चला दिया, मस्जिद में हीटर चला दिया, लेकिन सोचा ये कि भाई हीटर चलेगा थोड़ी सी गर्मी ज्यादा हो जाएगी, सफोकेशन गर्मी हब्स हो जाएगा, जरा थोड़ी सी खिड़की खोल दे ताकि ताजा हवा भी आती रहे और साथ में हीटर भी चलता रहे। तो आप बताइए वो कमरा गर्म होगा जिसकी थोड़ी सी खिड़की खुली हुई है? हालांकि हीटर तो चल रहा है और हीटर की खासियत है कि कमरा गर्म होना चाहिए, लेकिन कमरा गर्म क्यों नहीं हो रहा? वजह यह है कि खिड़की खुली हुई है, और थोड़ी सी भी खिड़की खुली हो क्या कहते पूरा दरवाजा बंद करो, जरा सा भी अगर एक इंच दो इंच भी दरवाजा खुलाओ, क्यों जनाब गर्म होगा? नहीं होगा। हालांकि एक इंच दो इंच से क्या होता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों तो हमारी इबादत के बावजूद जिक्र और तिलावत के बावजूद ये दीन की मेहनत के बावजूद जो हमें चैन और सुकून नहीं मिल रहा तो कुरान पाक गलत नहीं हो सकता। वजह यह है मेरे मुर्शिद ने फरमाया कि गुनाह की खिड़की खुली हुई है, किसी न किसी गुनाह की आदत में मुलव्वस है कोई ना कोई गुनाह। अब वो गुनाहों की अकसाम क्या हो सकती है? हो सकता है जिक्र कामिल ना, यह भी है, क्योंकि जैसे नमाज है, नमाज की अगर कोई आदमी सुन्नत के मुताबिक नमाज ना पढ़े, नमाज तो लंबी लंबी पढ़ता है। हमारे यहां एक साहब थे, उनकी एक अजीब आदत, वो ये कि मगरिब की नमाज से लेकर इशा की नमाज तक पूरे जितना भी वक्त हो नफले पढ़ते पूरा वक्त माशाल्लाह। लेकिन उनकी एक आदत अजीब थी और वो ये कि फजर की नमाज जमात से नहीं पढ़ते थे। अब आप फैसला कीजिए, हजरत उमर खुद फरमाते हैं, एक सहाबी के बारे में फरमाया जो एक दिन सो गए थे तो मां से पूछा, फजाइल आमाल में भी ये रिवायत मौजूद है, मां से पूछा कि भाई क्या बात है आज वो फजर में क्यों नहीं आया, जबकि उनकी जिम्मेदारी भी थी कि फजर के लिए लोगों को उठाना, बाजार में ड्यूटी थी। तो मां ने कहा कि बात यह कि वो रात भर तो नफिल पढ़ते रहे इसलिए फजर की नमाज में नींद आई और सो गए। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मैं इस बात को पसंद करता हूं कि रात भर कोई नफिल न पढ़ूं लेकिन फजर की नमाज जमात से मस्जिद में पढ़ूं। तो अब वो आदमी जो नफिले तो मगरिब से इशा तक खूब पढ़ रहा है, अच्छा है पढ़नी चाहिए, इजाफा होना चाहिए कि इंसान को इससे और अल्लाह की याद, यही तो हमारी करेंसी है आखरत की भाई, वहां डॉलर और पाउंड और ये सब थोड़ी काम आएगा वहां पे, वो तो यही अमाल काम आएंगे हमारे, वहां की करेंसी यही है भाई आखरत की। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों एक आदमी नफले इतनी पढ़े फजर की नमाज जमात से ना पढ़े, क्या नतीजा होगा? गुनाह में मुबतला है कि नहीं है दादा? इसलिए मेरे दोस्तों, और फिर नमाज कैसी होनी चाहिए? नमाज की सुन्नतों का एहतमाम हो। इसलिए नमाज ये बयान के बाद जो एक किताब तकसीम होगी वो मेरे प्यारे शेख और मुर्शिद की किताब है, उसका नाम भी बड़ा प्यारा है, वो क्या है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नतें, प्यारे नबी की प्यारी सुन्नतें, ये किताब आप हजरात ले ले, उसमें ये देखें कि आया मेरी नमाज सुन्नत के मुताबिक भी है कि नहीं, मैं हाथ कैसे बांधता हूं, रुकू कैसे करता हूं, कयाम में कैसे खड़ा होता हूं, सजदा कैसे करता हूं, ये तमाम सुन्नतें, और मस्जिद में आना मस्जिद में जाने का सुन्नत तरीका, लिबास का सुन्नत तरीका, बैतुल खला से आना बैतुल खला से में जाना ये तरीका, और उसी तरह से पैदाइश से लेकर मौत तक सुबह से लेकर शाम तक तकरीबन तमाम सुन्नतें उसमें लिखी हुई है मेरे दोस्तों। लाला हम अपने अमल को मिलाए, आया हमारी इबादत ठीक भी है कि नहीं, ताकि एक तो इबादत कामिल हो तब मजा पूरा मिलता है। जैसे अगर एयर कंडीशन जब चलाया जाता है तो कहते एयर कंडीशन चला दिया लेकिन कमरा ठंडा नहीं हो रहा, क्यों जी? पता ये चला कि वोल्टेज ठीक नहीं आ रहा। जब वोल्टेज कम आ रहा हो तो एयर कंडीशन चलता है, डीप फ्रीजर चलता है, नहीं ना जनाब, मशीनें नहीं चलती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा ना हो, सुन्नत पे अमल ना करने की वजह से अल्लाह की तजल्ली और इत्मीनान का वोल्टेज जो है मेरे पूरा नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि सुन्नत का वोल्टेज पूरा नहीं आ रहा। जब वोल्टेज कम होगा तो ट्यूबलाइट नहीं जलती है। कभी ऐसा होता ना जी, अगर वोल्टेज कम आ रहा हो ट्यूबलाइट नहीं जलती है तो पता ही चला फिर स्टेबलाइजर लगाया जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सुन्नत पर जो अमल करेंगे उससे हमारा इत्मीनान का और अल्लाह ताला की मोहब्बत और जिक्र का जो वोल्टेज अब ठीक आएगा, उसके नतीजे में हमारे दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत का एयर कंडीशन चलेगा। तो हीटर अगर चल जाए और खिड़की खोली हुई है, सुकून नहीं मिल सकता। लिहाजा मेरे प्यारे दोस्तों, हम इबादत और नमाज तो पूरी पढ़े लेकिन हमारी शलवार अगर टखनों से नीचे है, जबकि मर्दों के लिए टखने का छुपाना, टखने से नीचे शलवार और चादर का लटकाना हराम और गुनाह कबीरा है कि नहीं है? और यह हुक्म सिर्फ नमाज के लिए नहीं है कि मस्जिद में आए शलवार ऊपर कर ली, बल्कि यह हुक्म मर्दों के लिए खड़े होने की हालत में और चलने की हालत में। मेरे दोस्तों, लादा मैंने अपने शेख को सारी जिंदगी अमल देखा, हजरत तशरीफ फरमाए खड़े होते हैं, सबसे पहले खड़े होते ही अपनी शलवार को पकड़ के ऊपर कर लेते हैं। हालांकि हजरत की शलवार पहले छोटी होती है, लेकिन सब इस वजह से कि मेरा कोई लम्हा, एक लम्हा भी अल्लाह ताला की नाफरमानी में ना गुजरे, सिर्फ इस वजह से। या हमने नमाज तो है, जिक्र तिलावत भी है, बयानात बुजुर्गों से मोहब्बत भी है, लेकिन मेरे दोस्तों हम दाढ़ी नहीं रखते। या दाढ़ी तो रखी लेकिन दाढ़ी अपनी मर्जी की रखी, शरीयत की मर्जी की न रखी, वो ये कि थोड़ी थोड़ी दाढ़ी रख ली ताकि मुल्ला भी खुश हो जाए और मिस्टर भी खुश हो जाए, दोनों को खुश करे। मुल्ला से कहे हाँ भाई, मुल्ला पूछे भाई दाढ़ी क्यों नहीं रखी, कहा ये देखिए ना थोड़ी थोड़ी तो है। और मिस्टर से पूछा, मिस्टर ने पूछा है तुमने दाढ़ी क्यों रखी, है यार पूरी का रखी है, घबराते क्यों? तो दोनों कश्तियों में सवार। ऐसा नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा नहीं हो सकता। खुशबू और बदबू जमा नहीं हो सकते। लादा जब हिम्मत कर ली, वो एक मुहावरा है ना, जब ओखली में दिया सर तो फिर मूसलों का क्या डर। अरे मियां जब हिम्मत कर ली तो अब इस दाढ़ी को बालिग कर ले। नाबालिग की शादी नहीं होती ना, बालिग की शादी होती ना, तो दाढ़ी को भी बालिग कर ले। और दाढ़ी बालिग कब होती है? जब एक मुट्ठी रखी जाए मेरे दोस्त, एक मुट्ठी दाढ़ी रख ले और मुट्ठी अपनी नापे, एक मुट्ठी सामने से, एक मुट्ठी दाएं से और एक मुट्ठी बाएं से, तीनों तरफ से एक मुट्ठी दाढ़ी का रखना वाजिब है। और इसी तरह से ये दाढ़ी का बच्चा है, ये होंठ के जो नीचे वाले, होंठ के जो नीचे ये जो बाल छोड़े से निकलते ना, ये दाढ़ी का बच्चा है, इसको काटना भी हराम है और गुनाह है मेरे दोस्तों। इसको भी ना काटे, इसको भी रख ले, सही है जनाब। उसी तरीके से अब पता ये चला, हमने अपनी आंखों का शीशा खोला हुआ है कि औरतों को देख रहे हैं, बाजार में जो साइन बोर्ड और तस्वीरें मोबाइल कंपनियों के लगे हुए, पता चला देखते देखते उसको भी देख रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, अखबार पढ़ने के बहाने फिल्मी अदाकारें या टेनिस की खिलाड़ियों की जो तस्वीरें आ रही हैं वो भी देख रहे हैं उसको। तो नतीजा क्या होगा? ये जो बदनजरी करके हम लानत खरीद रहे हैं, उसकी वजह से हमारी इबादात के अनवारात जो दिल में जमा होते हैं वो जाया हो जाते हैं मेरे दोस्त। यानी हमने हीटर भी चलाया और साथ में खिड़की खोल के वो सारी गर्मी अंदर, अब ठंडक अंदर आ रही है और दिल कमरा गर्म नहीं हो रहा मेरे दोस्तों। इसलिए और उसी तरीके से पता चला बदनजरी, नजर तो बचा ली, हम बुजुर्गों की सोबत में भी हैं, सब काम कर रहे हैं, लेकिन अपनी बहन को अगर विरासत नहीं दी मेरे दोस्तों तो उसका नतीजा क्या होगा? और उसको ये कह दिया बस हमने तुम्हारी शादी करा दी, अब भूल जाओ। तो मेरे दोस्तों, अब हम दीन की मेहनत में भी लगेंगे, मिंबर पर बैठकर तकरीरें करेंगे तो क्या नतीजा होगा? नतीजा ये होगा कि हमें कभी भी इत्मीनान, चैन और सुकून नहीं मिल सकता। कि पता चला पैसा है भी, कर्जा अदा भी कर सकते हैं लेकिन कर्जा देते नहीं है। वो जो कर्जा है वो बार बार कर्जा आकर मांग रहे, भाई मेरा पैसा वापस करो। ये क्या बात है, तुम शादी पे लाखों रुपया खर्चा कर रहे हो और घूमने फिरने हर काम के लिए जा रहे हो, मेरा पैसा क्यों नहीं देते? तो नतीजा क्या होगा मेरे दोस्तों? फिर उसके बाद अगर हम हर साल हज उमरा भी करें, तबलीग में चिल्ले पे चिल्ले लगाएं, बुजुर्गों के पैर भी दबाएं, उनकी जूती भी सीधी करें, मस्जिद मदरसे में पैसा भी खर्च करें, लेकिन नतीजा क्या होगा कि हम अल्लाह ताला के फरमा बरदार बंदे नहीं कहलाएंगे और हम बावजूद इबादत करके हमारे दिल में घबराहटें, बेचैनियां और बेसुकूनियां रहेंगी। दादा क्या करे? इत्मीनान, जिक्र कामिल करे। और मेरे मुर्शिद ने समझाया, देखिए ये जो आपके यहाँ भी बिजली होती है ये दो दो तारों से जलती है, एक लाल होती है, एक काली होती है, एक पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है, एक मुस्बत होती है, एक मनफी होती है। और बिजली वालों की जबान में कहा जाता है एक गर्म होती है, एक ठंडी होती है। ये बिजली वालों की जबान में एक ठंडी गर्म तार, अगर किसी आदमी ने गर्म तार लगा दी और ठंडी तार ना लगाई, बताइए बिजली जलेगी नहीं जलेगी ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमने जिस तरह से जिक्र तिलावत इबादत का तबलीग में वक्त लगाकर जो हमने अल्लाह की मोहब्बत का एक गर्म तार लगा दिया ईमान को गर्म करने का, साथ साथ में उसको ठंडक से भी बचाए, ठंडी तार लगा दे ताकि गुनाहों की ठंडक ना आने पाए, तो फिर क्या नतीजा होगा, फिर हमारी थोड़ी सी इबादत भी काफी हो जाएगी। और मेरे मुर्शिद ने इसको यूं भी समझाया, एक आदमी खूब मुर्गे और देसी मुर्गे, देसी अंडे और दूध भी खा रहा है और सारी गजाएं सलाजीत भी पहाड़ों का असली वाला खा रहा है, लेकिन साथ में थोड़ा सा जहर भी खा लेता है, सेहत मिलेगी उसे नहीं मिलेगी ना। और एक आदमी सलाजीत नहीं खाता, मुर्गे नहीं खाता, चटनी रोटी खाता है, उसकी सेहत कैसी होगी, लाल टमाटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बस मेरे मुर्शिद ने फरमाया, इबादत चाहे थोड़ी करो लेकिन गुनाह से बहुत बचो, चाहे इबादत थोड़ी करो लेकिन गुनाह से बचने का ज्यादा एहतमाम करो। और रही बात कि जिस तरह से अब जब बिजली पूरी नहीं आती तब क्या कहते हैं, वोल्टेज में कमी होती है, स्टेबलाइजर लगाते हैं, उससे क्या होता है 180 जो वोल्ट है वो 220 पूरा हो जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसी तरह से अगर हमसे गुनाह नहीं छूट रहे तो क्या अल्लाह ताला फरमाए, कूनू मा सादिकीन, तुम अल्लाह वालों के पास बैठो, अल्लाह वालों की सोबत में रहो। यानी अल्लाह वाले कौन, जो गुनाह छोड़कर अल्लाह ताला के फरमा बरदार है, सुन्नतों पर अमल करने वाले, उनकी सोबत में रहो। तो नतीजा ये होगा कि उनकी सोबत से तुम्हारे जो सुन्नत की कमी, जो अल्लाह की फरमा बरदारी की कमी है, गुनाहों की आदत, वो फरमा बरदारी की आदत से तब्दील हो जाएगी। और फिर हमारे दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत का, इत्मीनान का एक कंडीशन चल जाएगा। फिर न सिर्फ ये कि हम खुद चैन से रहेंगे, बल्कि मेरे प्यारे दोस्तों, वो ऐसे बंदे के पास जो बैठेगा उसको भी चैन, सुकून और इत्मीनान मिल जाएगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दुआ कर लीजिए कि अल्लाह ताला ये जो बातें पेश की गई, मुझको भी इस पर अमल की तौफीक अता फरमा, हम सबको अमल की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, हमारी इबादत को सुन्नतों के जरिए से कामिल फरमा दीजिए, हमें तौफीक अता फरमा कि हम सुन्नत और शरीयत पर अमल करें। और या अल्लाह, हर गुनाह से हम सबको बचा लीजिए, सूरत सीरत के जो गुनाह उससे भी बचा, सूरत के गुनाहों से भी बचा, इबादत में जो कमी कोताही है उसको मुआफ फरमा। और या अल्लाह, उस कमी को पूरा करने की तौफीक अता फरमा, हमारे अंदर अखलाकी जो कमी है उसको भी पूरा फरमा दीजिए, हमारे गंदे अखलाक को अच्छे अखलाक से तब्दील फरमा, मुआमलात में जो अल्लाह हम गुनाह में मुबतला है या अल्लाह, उसको भी दुरुस्त करने की तौफीक अता फरमा, माँ बाप का फरमा बरदार बना, अपने बड़ों के अदब की तौफीक अता फरमा, उलमा की मोहब्बत और उनका अदब अता फरमा, छोटों पर शफीक और मेहरबान फरमा, बीवियों पर शफकत की तौफीक अता फरमा, बच्चों की दीनी तरबियत की तौफीक अता फरमा। ए करीम मालिक, हमारे कामों को आसान फरमा, हमारी जरूरियात को पूरा फरमा, हम सबको रिज़्क हलाल आफियत और फरावानी के साथ अता फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा, सेहत जिस्मानी अता फरमा, सेहत रूहानी अता फरमा, अहले मकरूज के कर्जों को अदा फरमा, अहले मुसीबत को अहले आफियत बना दीजिए। और ए करीम मालिक, अपने करम से, हाँ या अल्लाह, जिस तरह से आपने हमें ईमान की दौलत बगैर मांगे अता फरमाई, हमें इंसान बगैर मांगे बना दिया, या अल्लाह, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि दोनों जहान की रहमतें हम सब पर अता फरमा, दोनों जहान की राहतें अता फरमा, दोनों जहान की नियामतें अता फरमा, और दोनों जान की आफियत अता फरमा दीजिए। ऐ करीम मालिक, हमें हर गुनाह से बचा लीजिए, 100% हम सबको अपना फरमा बरदार बना, शरीयत और सुन्नत और हमारे बुजुर्गों के तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा, शरीयत और सुन्नत और हमारे बुजुर्गों के तरीके के मुताबिक दीन की खिदमत की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, हमारी दीनी जरूरियात को पूरा फरमा और दुनियावी जरूरियात को पूरा फरमा, सलामती ईमान और सलामती आदा के साथ दुनिया में रखिए, और सलामती ईमान सलामती आदा के साथ दुनिया से ले जाइए। ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم تقبل هذه الدعوات بحق انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صلى الله على النبي الكريم